हमें लगता है कि हम दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दुख हम दूसरे को पहुंचाते नहीं हैं, स्वयं अपने लिए दुख पहुंचाते हैं, दूसरा तो सिर्फ माध्यम बनता है। अच्छा देखो, नाक पर मक्खी बैठ जाए, परेशान करती है, हम झपटा मार करके उसको उड़ाते हैं, और फिर जब नहीं मारती मानती तो जोर से मार देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो किसको लगती बताओ, मक्खी को? चोट तो पहुंचाना चाहिए थी उसको कि चोट पहुंच जाएगी, मैं इतने जोर से मारूंगा आपकी बार तो बिल्कुल। ऐसा अपने जीवन में हमेशा अपन देखते हैं, चोट दूसरे को पहुंचाने का भाव करते हैं, लेकिन पहुंचती खुद को ही चोट है। ये इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन ये दिन भर में कितनी बार हमारे जीवन से गुजरती है और हम इस चीज को समझ नहीं पाते। आचार्यों ने लिखा कि जो दूसरे जीवों का वध करता है, मानो वो स्वयं अपने आत्मा का ही वध करता है, और जो दूसरे के प्रति दया रखता है, मानो वो अपने प्रति ही दया रखता है। ऐसा जान करके जो सज्जन पुरुष हैं, वे जीव हिंसा का त्याग करते हैं। मूल फल शाक शाका करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति। एक श्रावक धीरे धीरे करके अपने जीवन में ऐसा विचार करता है कि मुझे आत्म सुख पाना है और मुझे संसार के दुख से बचना है, तब फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने व्यवहार को टटोलना चाहिए दूसरे के प्रति। अभी तक तो मैं दूसरे के व्यवहार को अपने प्रति टटोलता आया हूं कि इनका मेरे प्रति व्यवहार कैसा है, अब मुझे अपने से शुरू करना चाहिए। मेरा दूसरे के प्रति अगर चोट पहुंचाने का व्यवहार है तो तैयार रहना चाहिए, वहां से भी मेरे ऊपर चोट ही आने वाली है। और या कि मुझे दूसरे से चोट पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि मैंने कभी चोट पहुंचाई होगी, और अगर मैं दूसरे के प्रति दया का और करुणा का भाव रखता हूं तो मानिएगा मैं अपने ऊपर ही दया और करुणा कर रहा हूं। एक बहुत पुराना उदाहरण है, उससे शायद ही बात स्पष्ट हो कि हम जो व्यवहार दूसरे के प्रति करते हैं उसी से हमारा राग द्वेष बढ़ता है। राग द्वेष को घटाने के लिए अपने व्यवहार को, वो जो दूसरे के प्रति अपना व्यवहार है, उसको संभाल लेना चाहिए। इतनी ही चीज समझने की है। क्या हुआ, एक बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत पैसा होने के बावजूद भी उसके मन में आया कि मैं और कमाऊं, और वो चला गया। पहले लोग अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे और जा रहे हैं कमाने, वर्षों में लौटा करते थे। तो सेठानी ने कहा कि देखो, मेरा अकेले तो मन नहीं लगेगा, आगे पीछे कोई नहीं है, तुम एक वीणा ला दो, मैं वीणा बजाऊं, भगवान का भजन करते रहूं, अपना समय गुजार लूं। उन्होंने कहा ठीक, एक वीणा ला दी, वो बजाती है वीणा, भगवान के भजन गाती है। उस घर के पास बहुत बड़ा जंगल फैला है, उस जंगल से एक हिरण रोज उसकी वीणा सुनने आ जाता है, और जब वो भजन पूरा कर चुकती है तब एक हीरा वो गिरा करके चला जाता है। ठीक है ना, कोई भी एक बहुत कीमती मूल्यवान पत्थर है, बहुमूल्य, जैसे आप तो हीरे जवाहरात के बीच में ही बैठे हुए हैं, उसी शहर में बैठे हैं, वो एक गिरा के चला जाता है। और ये क्रम बहुत दिन तक चलता है, और इतने में वो सेठ बहुत पैसा कमा के वापस लौटता है। तो ये सारी चीज उसको बताती है कि ये इतने हीरे, एक हिरण रोज मेरा भजन सुनने आता है भगवान का, जब मैं गीत गाती हूं वीणा बजाती हूं, और वो जाते समय एक हीरा रोज गिरा जाता है। उसने कहा बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत हीरे होना चाहिए, और ये रोज रोज एक हीरे का क्या चक्कर, एक ही बार में पूरे ले लो ना। दूसरा हमारे प्रति कितना बढ़िया व्यवहार कर रहा है, वो रोज हमें कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन वो कुछ दे रहा है, हम चाहते हैं कि एक साथ पूरा मिल जाए। यही तो करते हैं अपन, अपनों से भी और पराये से तो करते ही हैं, अपनों का भी हम शोषण करते हैं, जो हमारे लिए सुख पहुंचाते हैं उनसे भी हम और अधिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। दूसरे को सुख दूं ऐसी आकांक्षा नहीं, दूसरे से हमेशा सुख मिलता रहे और चाहे दूसरे को मैं दुख देता रहूं, मेरा व्यवहार दूसरे के प्रति चाहे जैसा हो, दूसरे का मेरे प्रति अच्छा ही होना चाहिए। ये अपन लोगों के अंदर एक संस्कार पड़ गया है, इसको चाहे संस्कार कहो, चाहे हमारी गाफिलता कहो, हमारी असावधानी कहो, जो भी कहना चाहो, लेकिन संसार के दुख का कारण मुझे लगता है कि यही है। आचार्य भगवंतों ने इसीलिए इस संस्कार को तोड़ने के लिए हमें सलाह दी और उपाय बताए हैं कि इस संस्कार को कैसे तोड़ें। और होता क्या है, दूसरे दिन हिरण आता है वीणा बजते ही, और फिर वो हिरण को मारने के लिए तैयार हो जाता है। सेठानी उसे मना करती है लेकिन वो हिरण को मार देता है। और इतना ही नहीं, क्योंकि सेठानी का बहुत लगाव उस हिरण से हो गया था, तो उसके बीच बचाव में वो सेठानी को भी मार देता है। देखना आप, ये हमारा अपना व्यवहार दूसरे के प्रति, असल में हम दूसरे के प्रति सोचते हैं कि हम बुरा व्यवहार कर रहे हैं, पर देखना अपने साथ ही घटित हो रहा है बुरा, जो कुछ भी हो रहा है। दूसरे का घात करने गए, अपना ही हुआ, और जाकर के देखा कि शायद इसके भीतर ढेर सारे हीरे होंगे, लेकिन वहां क्या था, वहां कुछ भी नहीं था, एक भी हीरा नहीं मिला। और जाकर के सोचा कि वो जो इतने कमरे में हीरे रखे हैं वो जाकर के देखूं, तो कहानी में लिखा है कि वे हीरे भी कांच जैसे ही हो गए, अब उनमें कोई कीमत नहीं रही, उनमें तो जीवन डालने वाला ही नष्ट हो गया, तो फिर कौन वहां पर शेष रहेगा। क्या हुआ इस घटना से, क्या समझ में आया, घाटा दूसरे का करना चाहा था, हुआ किसका। ये रोज का काम है, ये तो कहानी है, अपन देख रहे हैं रोज इस चीज को। ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें अपने व्यवहार को देखने के लिए थोड़ा सा मौका मिले, हम अपना व्यवहार देखें कि हमारा व्यवहार दूसरे के प्रति अगर दया का है तो मानिएगा हमारा कल्याण होगा, और अगर दूसरे के दुख पहुंचाने का खोटा व्यवहार है तो मानिएगा हम अपने दुख को स्वयं निमंत्रण दे रहे हैं। जो प्राणी मात्र के सुख की भावना भाता है वो अपने जीवन में सुख पाता है, और जो प्राणियों के दुख का विचार करता है वो अपने आप के दुख का इंतजाम करता है। शायद इसी भावना से प्रेरित होकर के पांचवी प्रतिमा में श्रावक को सलाह दी जा रही है कि अगर उसके मन में अपने आत्म सुख पाने की ललक पैदा हो गई है और संसार के दुख से बचने का भाव पैदा हो गया है, तो अपने व्यवहार को संभाल लें, किसी को भी दुख नहीं देना अपने दुख से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। और ऐसी दया की मूर्ति वो पांचवें प्रतिमा का धारण करने वाला श्रावक हो सकता है। अभी साधु की बात छोड़ो,